ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 12 मई 2019 के लिए है। विषय: आदम और पतित इंसान। स्वर्णपथ: भजन सेनता। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उत्तरदायी ध्यान: भजन सेनता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भुलाना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्पन्न पदार्थों से तर्पित करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नहीं हो जाती है। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे यरूशलेम के खंडहारो, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रागत की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। उत्पत्ति। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उत्पत्ति। तो भी कोहर पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके शांति मास भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरुण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुले हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन अभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदमी से पूछा, तू कहाँ है? आदमी ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। लूका। फिर किसी फरीसी ने उसकी विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वो उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा और देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है संगमरमर के पात्र में अतर लाई और उसके पाँव के पास खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पूंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्य अद्विक्ता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुनकर यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ उसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर अतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वो लोग जो उनके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। पतरस, तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशामान वास्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बाहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था पर इस अंतम युग में तुम्हारे लिए प्रागत हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। क्रंथियों, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आदमी अंत आत्मा का यौगिक विचार, भगवान की आध्यात्मिक छवि और सामानता, मन का प्रतिनिधित्व है। मनुष्य अंदर एक मन के साथ एक भावतिक रूप से अधिक है जिसे अमर होने के लिए अपने वातावरण से बचना चाहिए। मनुष्य अनंतता को दर्शाता है और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है। परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है। एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है। मन सत्य की अनंतता में मौजूद है। हम ईश्वर के बारे में मनुष्य की सच्ची ईश्वरीय छवि और समानता के रूप में नहीं जानते हैं। अनंत सिद्धांत, अनंत विचार और आध्यात्मिक व्यक्तित्व द्वारा परिलक्षित होता है, लेकिन तथाकथित इंद्रियों की सामग्री का सिद्धांत या उसके विचार का कोई संज्ञान नहीं है। मानव क्षमताएँ बध जाती हैं और अनुपात में परिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मानवता मनुष्य और ईश्वर की सच्ची अवधारणा को प्राप्त करती है। आध्यात्मिक रूप से अनुसरण किया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक भगवान की असत्य छवि का इतिहास है जिसे एक पापी नश्वर नाम दिया गया है। सही तरीके से देखे जाने का ये विक्षेप भगवान के उचित प्रतिबिंब और मनुष्य की आध्यात्मिक वास्तविकता का सुझाव देने का कार्य करता है, जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में दिया गया है। पुरानी बाइबल की तस्वीरों में हम ज्ञान के वृक्ष के चारों ओर एक सांप को देखते हैं जो आदम और हवा से बातें करता है। ये सांप का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पहले माता पिता को अच्छे और बुरे का ज्ञान देने के लिए इसका अर्थ है आत्मा से बधा हुआ पदार्थ या बुराई प्राप्त हुआ ज्ञान। नश्वर मनुष्य की सामान्य अधारणा के लिए चित्रण अभी भी ग्राफिक रूप से स्थित है, यानी भगवान के आदमी की एक परछाई या मानवीय ज्ञान या कामुकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो भावतिक अर्थों का एकमात्र हिस्सा है। ज्ञान का निश्विद फल जिसके विरोध ज्ञान मनुष्य को चेतावनी देता है त्रुटि की गवाही है, अस्तित्व को मृत्यु की दया पर होना और अच्छाई और बुराई को काम करने में सक्षम होना, इस विषय में पवित्र शास्त्र का महातत्व है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। भौतिक विश्वास की यह वृद्धि जिसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मानव परिकल्पनाएं पहले बीमारी पाप और मृत्यु की वास्तविकता को मानती हैं, फिर उनकी स्वीकार की गई वास्तविकता के कारण इन बुराइयों के आवश्यकता को मानती हैं। ये मानवीय फैसले सभी कला के कारण हैं। आध्यात्मिक रूप से बनाया गया ईश्वर का मनुष्य भौतिक और नश्वर नहीं है। सभी मानव कला के जानिक आदम का सपना थे गहरी नींद, जिसमें उसकी उत्पत्ति हुई, उसका जीवन और बुद्धिमता किस पदार्थ से आगे बढ़ी और गुजर गई। ये नास्तिक त्रुटि यह तथाकथित सांप अभी भी सत्य के विपरीत पर जोड़ देता है, जो कह रहा है तुम परमेश्वर के तुले हो जाओ। इसका मतलब है मैं सत्य के रूप में वास्तविक और शाश्वत के रूप में त्रुटि करूंगा। मनुष्य को त्रुटि के अपने ज्ञान के रूप में जांचकर सत्य महिला को उसकी गलती कबूल करने की मांग करता है। वो कहती है सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। जैसा कि नम्र तपस्या में ये कहा जाता है कि मेरी गलती के लिए ना तो मनुष्य और ना ही भगवान जिम्मेदार होंगे। वो पहले ही जान चुकी है कि सांप शारीरिक समझ है, इसलिए वो पहली बार मनुष्य की भावतिक उत्पत्ति में विश्वास त्यागने और आध्यात्मिक निर्माण करने को है। इसके बाद महिला को यीशु की मां बनने और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता को देखने के लिए सक्षम किया गया, जो जल्द ही ईश्वर की रचना करने वाले मृत्युहीन व्यक्ति को प्राप्त करने वाली थी। इस महिला ने अपने सच्चे अर्थों में पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के लिए पहली बार सक्षम किया, जो मनुष्य की आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्राप्त करता है। जो कुछ भी मनुष्य के पाप को दर्शाता है या भगवान के विपरीत या भगवान की अनुपस्थिति आदम का सपना है, जो ना तो मन है और ना ही मनुष्य है, क्योंकि ये पिता की भीख नहीं है। रूपांतरण का नियम गलती से उसके विपरीत सत्य से परिभावित होता है, लेकिन सत्य प्रकाश है जो त्रुटि को दूर करता है। जैसा कि नश्वर आत्मा को समझना शुरू करते हैं, वो इस विश्वास को छोड़ देते हैं कि भगवान के अलावा कोई भी वास्तविक अस्तित्व है। वो दिव्य मन जिसने मनुष्य को बनाया अपनी छवि और समानता को बनाए रखती है। मानव मन भगवान के विपरीत है और उसे बंद करना चाहिए, जैसा कि सेंट पॉल ने घोषणा की है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है वो दिव्य मन और उसका विचार है, और इस मन में संपूर्ण प्राणी समान जैसा पूर्ण और शाश्वत है। इस तथ्य को देखना और स्वीकार करना, इस शक्ति को प्राप्त करना और सत्य की अग्रणीता का पालन करना सीधा और संकीर्ण तरीका है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुख हद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य की प्रतीत बीमारी पाप और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं, पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। यदि मनुष्य एक बार परिपूर्ण था लेकिन अब अपनी पूर्णता खो चुका है, तो मनुष्यों ने ईश्वर की परिवर्तित छवि को कभी नहीं माना। खोई हुई छवि कोई छवि नहीं है। सच्ची समानता दिव्य प्रतिबिंब में खो नहीं सकती। इसे समझते हुए यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये माना जाता है कि मन और पदार्थ का सह अस्तित्व और अच्छे और बुरे का मेल सांप के प्रदर्शन से हुआ है। यीशु के प्रदर्शनों ने गेहियों के ढेर को हिलाया और एकता और अच्छे असत्य कुछ भी नहीं और बुराई की वास्तविकता को उजागर किया। भावतिकता और आध्यात्मिक विपरीत के माध्यम से यहाँ तक कि मसीह सत्य के माध्यम से भी मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा, जिसके बारे में मनुष्य का मानना है कि वो बंद थे, और वो खुद को बेदाग, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। उद्देश्यों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के उद्देश्यों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।